नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में 1700 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों को निष्क्रिय करने के लिए किश्तवाड़ जिले में आतंकरोधी अभियान तेज किया। भारत और अरब देशों के विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक में 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में बैठक। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना की। बहुध्रुवीयता का समर्थन करने की आवश्यकता पर बल। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए शहीदी दिवस भी मनाया जा रहा है। भारत की वीर चोटरानी फ्रांसीसी खिलाड़ी बैप्टिस्ट मासोची को हराकर स्क्वैश फायर ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। गृहमंत्री अमित शाह ने असम के डिब्रूगढ़ में आज विधानसभा के दूसरे परिसर सहित 1715 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। डिब्रूगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता यूरोपीय देशों को असम की चाय के निर्यात को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने असम को बाढ़ मुक्त बनाने के कदम उठाए हैं। उन्होंने मतदाताओं से आगामी विधानसभा चुनावों में विकास, शांति, सुरक्षा, उद्योग और बाढ़ मुक्त असम के लिए भाजपा को वोट देने का आग्रह किया। कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार पर असम की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस ने अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए घुसपैठ को हथियार बनाया। उन्होंने कहा कि पहले असम हिंसा और अशांति के लिए जाना जाता था, लेकिन भाजपा सरकार में राज्य में अब शांति और विकास के लिए जाना जाता है। श्री शाह ने कहा कि यह राज्य के लोगों, विशेष रूप से ऊपरी असम के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि डिब्रूगढ़ में असम विधानसभा का दूसरा परिसर बन रहा है।
250 एकड़ में असम के दूसरे विधानसभा परिसर का शिलान्यास हुआ है। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। ये समावेशी विचार कि असम का हर क्षेत्र, इसकी असम पर मलकियत, यहाँ ढेर सारे जाति समुदाय ट्राइब्स रहते हैं, वो सभी का असम पर अधिकार है और सब मिलजुल कर एक महान असम बनाएंगे।
श्री शाह ने कहा कि आधुनिक बहुविषयक खेल परिसर में इंडोर स्टेडियम, स्विमिंग पूल, फुटबॉल मैदान, मुख्य गैलरी, टेनिस, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल कोर्ट और छात्रावास शामिल हैं।
240 करोड़ से 106 बीघा में इंडोर स्टेडियम, स्विमिंग पूल, खिलाड़ियों की हॉस्टल और कोच को रहने की जगह, विश्व भर के जो आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, ऐसा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का पहला चरण आज बनकर यहां लोकार्पित किया गया है और इसके साथ ही 209 करोड़ से दूसरे चरण का शिलान्यास भी हुआ है।
गृह मंत्री ने वन्य जीवों के उपचार और उन्नत प्रयोगशाला सुविधाओं के साथ साथ प्रशिक्षण इकाइयों के लिए 292 करोड़ रुपए के वन्य जीव स्वास्थ्य और अनुसंधान केंद्र की आधारशिला भी रखी। इससे वन अधिकारियों, पशु चिकित्सकों और शोधकर्ताओं के बीच समन्वय बेहतर होगा। डिब्रूगढ़ के बाद गृह मंत्री पड़ोसी जिले धेमाजी में ताकम मिसिंग पोरिन केबांग युवा महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे वहां भाजपा पदाधिकारियों के साथ भी बातचीत करेंगे। बाद में गृह मंत्री गुवाहाटी में राज्य भाजपा मुख्यालय में पार्टी सदस्यों के साथ चर्चा करेंगे। असम में अपने कार्यक्रम पूरे करने के बाद गृहमंत्री आज शाम पश्चिम बंगाल के लिए रवाना होंगे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने किश्तवाड़ जिले में बर्फ से ढके चतरू क्षेत्र में छिपे जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकवादियों को पकड़ने और उनका सफाया करने के लिए जारी आतंकरोधी अभियान आज और तेज कर दिया। एक रिपोर्ट।
सिंहपुरा, चिंगम और चतरू सहित क्षेत्र के 6 किलोमीटर दायरे के भीतर मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं, ताकि अभियान के दौरान राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा इसका दुरुपयोग न किया जा सके। ये अभियान 18 जनवरी को शुरू हुआ था, जिसमें मंदराल सिंहपुरा के पास सोनार के जंगलों में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इसमें एक पैराट्रूपर की जान चली गई थी और 7 जवान घायल हो गए थे। हालांकि आतंकवादी चुनौतीपूर्ण क्षेत्र और घनी झाड़ियों का फायदा उठाते हुए भागने में कामयाब रहे। 2 फीट से अधिक बर्फबारी के बावजूद सुरक्षा बल आतंकवादियों की लगातार तलाश कर रहे हैं। इसके अलावा 22 जनवरी को माली दाना टॉप और 25 जनवरी को जंसीर कंडीवार में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच 2 और मुठभेड़ हुई, लेकिन आतंकवादी एक बार फिर जंगल के भीतरी इलाकों में भाग निकले। इस बीच 2 संदिग्ध व्यक्तियों की मौजूदगी का सुराग मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने पुंछ जिले में सूरनकोट क्षेत्र के आसपास के इलाकों तथा पज्जा मोरहा और नबाना टॉप में तलाश शुरू कर दी है। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में आज 2 महिलाओं सहित 4 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। इन पर 8 लाख रुपए का इनाम था। ये माओवादी जिले के गोलापल्ली, कोंटा और किस्ताराम क्षेत्रों में सक्रिय थे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत और अरब देशों के विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसकी सह अध्यक्षता भारत और संयुक्त अरब अमीरात कर रहे हैं। अरब देशों के विदेश मंत्री और अरब लीग के महासचिव इस बैठक में भाग लेंगे। ये भारत और अरब के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक है जिसकी मेजबानी भारत कर रहा है। इस बीच नई दिल्ली में भारत और अरब के वरिष्ठ अधिकारियों की 4थी वार्ता भी हो रही है। एक रिपोर्ट।
10 वर्ष के अंतराल के बाद हो रही इस बैठक में शामिल होने के लिए कतर के विदेश मामलों के राज्य मंत्री सुल्तान बिन साद अल मुरैखी और लीबिया की विदेश मंत्री अल-ताहिर एसएम अल-बाउर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। सोमालिया के विदेश मामलों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री अब्दी सलाम अब्दी अली आज सुबह नई दिल्ली पहुंचे। इसके अलावा अरब लीग के महासचिव, फिलिस्तीन के विदेश मामलों और प्रवासी मामलों के मंत्री, कोमोरोस के विदेश मंत्री तथा सूडान के विदेश मामलों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री कल ही नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। विदेश मंत्रियों की पहली बैठक वर्ष 2016 में बहरीन में हुई। इस बैठक में मंत्रियों ने सहयोग की प्राथमिकता वाले 5 क्षेत्रों, अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, शिक्षा, मीडिया तथा संस्कृति की पहचान की थी और इन क्षेत्रों में गतिविधियों का एक समूह प्रस्तावित किया था। भारत और अरब देशों के विदेश मंत्रियों की कल होने वाली बैठक मौजूदा सहयोग को आगे बढ़ाते हुए इस साझेदारी को विस्तार और गहनता प्रदान करेगी। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में अरब लीग के महासचिव अहमद अबुल घीत से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग सुदृढ़ करने के बारे में व्यापक चर्चा की गई। भारत ऊर्जा सप्ताह आज संपन्न हो गया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 4थे संस्करण को प्रभावशाली बताया। एक रिपोर्ट।
समापन समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इस आयोजन में वैश्विक सीईओस की बड़ी भागीदारी रही और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों की ओर से जबरदस्त रुचि देखने को मिली। ऊर्जा, गैस और शिपिंग क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण समझौते भी हुए। उन्होंने कहा कि नए वैश्विक खिलाड़ी भारतीय कंपनियों के साथ सहयोग करने को इच्छुक हैं। मंत्री ने कहा कि इंडिया एनर्जी वीक अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऊर्जा मंच बन चुका है और यह ग्रीन हाइड्रोजन, कॉम्प्रेस्ड बायोगैस, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स और उभरती तकनीकों जैसे कई क्षेत्रों को एक साथ कवर करने वाला अनूठा मंच है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन ने कार्यक्रम स्थल से आगे भी भविष्य की ऊर्जा पर व्यापक चर्चा को गति दी है। इस अवसर पर पेट्रोलियम मंत्रालय के सचिव डॉक्टर नीरज मित्तल ने कहा कि भारत की तेज आर्थिक वृद्धि के साथ ऊर्जा की मांग बढ़ी। आकाशवाणी समाचार के लिए पंजी से महेश चोपड़े।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता भारत को एक विकसित देश बनाने के दृष्टिकोण से पूरी तरह से मेल खाता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के लेख को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने एक ऐसा क्रांतिकारी समझौता किया है जो बाजारों का विस्तार करता है, रोजगार सृजित करता है और देश को मूल हितों की रक्षा करता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि मुक्त व्यापार समझौता लागू होने के बाद भारत को यूरोपीय संघ को निर्यात पर कोई कर नहीं देना होगा। एक साक्षात्कार में श्री गोयल ने कहा कि अब देश 50 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक के वस्त्र निर्यात का लक्ष्य रख सकता है। उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेश ने बहुध्रुवीयता का समर्थन करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने पिछले दिनों भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते का हवाला देते हुए कहा कि वैश्विक समस्याओं का समाधान किसी एक राष्ट्र द्वारा नहीं किया जा सकता। श्री गुतरेश ने स्थिर विश्व के लिए आपसी सहयोग पर बल दिया जिसमें शांति कायम रह सके। भारतीय निर्यात संगठन के महासंघ के महानिदेशक अजय सहाय ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते को देश के निर्यात इतिहास में एक मील का पत्थर बताया है। श्री सहाय ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता एक सकारात्मक पहल है और ये बिल्कुल सही समय पर हुआ है।
सर्विसेज में भी इंडिया को बहुत गेन होगा, 144 सर्विसेज में इंडिया को मार्केट एक्सेस मिलेगा, इन्वेस्टमेंट भी काफी इंडिया में फ्लो करेगा बिकॉज इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। मोबिलिटी फ्रंट पे जो हमारे वर्कर्स हैं या जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत फायदा मिलेगा, इंडियन स्टूडेंट्स अब ईयू मार्केट को ज्यादा जा सकेंगे। तो एक बहुत अच्छा ये एफटीए हो रहा है, जब इंडियन एक्सपोर्ट डाइवर्सिफाई और डीरिस्किंग के लिए देख रहा है तो एक बहुत बड़ा मार्केट इंडियन एक्सपोर्ट्स के लिए ओपन हो रहा है।
यूरोपीय संघ और भारत के बीच हुए ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते के बाद बांग्लादेश के सिली सिलाए कपड़ों के निर्यातकों को यूरोपीय संघ में कड़ी प्रतिस्पर्धा और बढ़ते मूल्य दबाव का सामना करना पड़ सकता है। इस समझौते के अंतर्गत भारतीय परिधान उत्पादों को यूरोपीय संघ में शुल्क मुक्त प्रवेश मिलेगा। द डेली स्टार में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार पिछले मंगलवार को घोषित 2027 में प्रभावी होने वाले इस यूरोपीय संघ भारत मुक्त व्यापार समझौते से भारतीय परिधान निर्यात पर मौजूदा 12% शुल्क समाप्त हो जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत की। ये बातचीत अबुधाबी में संयुक्त अरब अमीरात की मेजबानी में अमरीका रूस यूक्रेन राजनयिक प्रयासों के बीच हुई है। रूस में हुई बैठक में संयुक्त अरब अमीरात रूस रणनीतिक भागीदारी को मजबूत करने और व्यापार निवेश प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष और ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में सुनवाई प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दस्तावेजों के अलावा दूसरे दस्तावेज सौंपने वाले मतदाताओं के नाम अंतिम सूची से हटा दिए जाएंगे। आयोग की सूची के अनुसार अगर इन अधिकारियों के खिलाफ काम में लापरवाही या नियमों के उल्लंघन का साक्ष्य मिलता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। कृतज्ञ राष्ट्र आज महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि और शहीद दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रतिवर्ष 30 जनवरी को पूरा देश महात्मा गांधी के जीवन और विरासत को याद करता है, जो देश के स्वतंत्रता संग्राम के मार्गदर्शक थे। इस दिन को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नई दिल्ली के राजघाट स्थित गांधी समाधि पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने राजघाट में महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गांधी जी ने स्वदेशी पर हमेशा विशेष बल दिया, जो विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का एक मूलभूत स्तंभ है। आज स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद दिवस भी मनाया जा रहा है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड 2026 के सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता और सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार प्रदान किए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकी श्रेणी में महाराष्ट्र को गणेशोत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला। इसके बाद जम्मू कश्मीर तथा केरल का स्थान रहा। तीनों सेनाओं में भारतीय नौसेना को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते का पुरस्कार मिला है। भारत के वीर चोटरानी वाशिंगटन में स्क्वैश ऑन फायर ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने फ्रांस के बैप्टिस्ट मासोची को हराया। अब उनका सामना इंग्लैंड के डेक्लान जेम्स से होगा। घरेलू शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में आज दोपहर के कारोबार में 0.7% की गिरावट आई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 556 अंक लुढ़ककर 82,001 पर रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने असम में 1,700 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों को निष्क्रिय करने के लिए किश्तवाड़ जिले में आतंकरोधी अभियान तेज किया। भारत और अरब देशों के विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक में 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में बैठक। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना की। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए शहीदी दिवस भी मनाया जा रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।